वचन। नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि प्रभु यीशु के तीन कार्यभार हैं। पहला, जब वह इस पृथ्वी पर था तब वह एक भविष्यद्वक्ता था। वह परमेश्वर का संदेश इस पृथ्वी पर लाया था। दूसरा, आज वह स्वर्ग में हमारा मध्यस्थ एक महायाजक है जो परमेश्वर के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा, भविष्य में एक दिन वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा और अपना राज स्थापित करेगा। अर्थात वह राजा होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब आपके वचन को सुनने के लिए हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक को उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, बोलने और बातचीत करने पाए, मुझसे भी बातचीत करे, मुझे भी सिखाए, हम सबको सिखाए ताकि हम आपको महिमा दे सकें। जो हमारे भाई बहन निराश और परेशान हैं, वे सोचते हैं कि उनका कोई नहीं है, आप उनके साथ हो लीजिए, उन्हें धैर्य और हिम्मत दीजिए ताकि वे समझने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आप वही प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। पिताजी, आप हम सबके साथ हो, हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। इब्रानियों का लेखक प्रभु यीशु को भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा, स्वर्गदूतों से बड़ा और मूसा से भी बड़ा कहता है, यहाँ तक कि यहोशू से भी बड़ा और लेवी याजकों से भी बड़ा बताता है। अब वह याजकों की परिभाषा देगा कि याजक को कैसा होना चाहिए और वह प्रभु यीशु को एक सच्चा याजक बताता है। तो आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद को निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। मेरे मित्रों, यह पद याजक की परिभाषा देता है, उसे मनुष्यों में से चुना जाना चाहिए, अर्थात वह एक मनुष्य होगा, उसे मनुष्यों का प्रतिनिधि होना चाहिए, वह परमेश्वर के सामने मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वह परमेश्वर संबंधित बातों में मनुष्यों के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त जन होता है। अब क्योंकि वह परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, इसलिए उसे ग्रहण योग्य होना आवश्यक है। लिखा है, महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, इसका अर्थ यही है। पद 4 में विशेष करके लिखा गया है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, वह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होगा। अतः याजक में हम देखते हैं, पहली बात, मनुष्यों में से चुना जाता था, दूसरी बात, परमेश्वर का अभिषिक्त होता था अर्थात मनुष्यों के लिए, और तीसरी बात देखते हैं, मनुष्यों की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। मेरे मित्रों, अब हम याजक और भविष्यद्वक्ता में अंतर देख सकते हैं। याजक परमेश्वर के समक्ष मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता था और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का संदेश लेकर परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के पास आते थे। पुराने नियम के याजक मनुष्यों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते थे, यह सेवा भविष्यद्वक्ताओं को दी जाती थी। याजक का काम केवल यह था कि वह मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करे। आज केवल प्रभु यीशु मसीह ही याजक है, वह हमारी ओर से परमेश्वर के सामने उपस्थित है। याजक भटके हुओं के लिए नहीं, उद्धार प्राप्त मनुष्यों का सेवक था। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। परमेश्वर की संतान होने के बाद भी मैं पाप करता हूं, परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि वह कहता है, यदि कोई पाप करे तो तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मसीह यीशु स्वर्ग में मेरे लिए उपस्थित है। जब मेरा बैरी पिता परमेश्वर के सामने मुझ पर दोष लगाता है, तब प्रभु यीशु मसीह मेरी वकालत करता है, क्योंकि वह मेरा महायाजक है। यह एक कारण है कि मैं पृथ्वी के याजक से संतुष्ट नहीं हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। जी हाँ, यदि कोई परमेश्वर के सामने मेरा प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे परमेश्वर का ग्रहण योग्य होना चाहिए, उसे मान्य होना आवश्यक है। क्या उसने अपनी वकालत की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है कि मुझे स्वर्ग में उपस्थित कर सके? क्योंकि मुझे एक मध्यस्थ की आवश्यकता है, इसलिए मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि मेरे पास एक महान महायाजक है जो स्वर्ग में मेरी मध्यस्थता करता है। मेरे मित्रों, यह काम हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं, हम केवल एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। देखिए, महायाजक भेंट और पाप बलि दोनों चढ़ाया करता है, अर्थात चढ़ाता है। लेखक अति स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु के पास बलि चढ़ाने के लिए कुछ था, उसने अपने आप को ही दे दिया। प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू की तुलना में जिसके द्वारा उसने हमारा उद्धार किया है, सोना और चांदी तो कूड़ा है। आगे लिखा है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। यहां पाप विश्वासी के जीवन का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, क्रोधित होने के बाद क्या आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी थी? आपके पास एक प्रतिनिधि है जो आपकी मध्यस्थता करता है। वह आपको परमेश्वर के समक्ष निर्दोष उपस्थित करता है। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हमारा महान महायाजक अपनी सांसारिक सेवा के अंत में यह कहने के योग्य था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 46 पद में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? प्रभु यीशु के शिष्य 3 वर्ष तक उसके साथ थे, और यदि उसमें कोई दोष होता तो वे जानते थे। वह पाप रहित था, उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर मानव रूप में रहा, इसलिए वह हमारी दशा को समझता है। हम देख रहे हैं कि वह अज्ञानों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानों के साथ नरमी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अज्ञानता के पाप। लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इन पापों का उल्लेख है। यदि आप यह सोचें कि आपने पाप नहीं किया है और आप बड़े आनंद का जीवन जी रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। आप अनजाने में पाप करते हैं और हमारा महायाजक उसे संभाल लेता है। वह अज्ञानी पर दया करता है। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। परमेश्वर हमें भेड़ कहता है, क्योंकि भेड़ें भटक जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। हारून भी निर्बलता और दुर्बलता से घिरा था। वह जानता है कि हमें कैसा लगता है। वह एक सिद्ध मध्यस्थ है। जब हम गिर जाते हैं, तब वह हमारे साथ कीचड़ में नहीं गिरता है, वह हमें उठाने के लिए वहां भी हमारे साथ होता है। मेरे प्रियो, हारून के साथ समस्या यह थी कि वह मनुष्य के उन पापों को अनदेखा कर सकता था जो उसने स्वयं किए थे, या जो पाप उसने नहीं किए थे उन्हें वह दोष दे सकता था। यह एक खतरे की बात थी, परंतु प्रभु यीशु दया सिखाता है, दया दिखाता है। वह ना तो किसी का पाप अनदेखा करता है और ना ही किसी को दोष देता है। जब हम उसके पास आकर अपने पाप को स्वीकार करते हैं, तो वह हमें अगली बार गलती न करने का भाषण नहीं सुनाता है। वह केवल हम पर दया दिखाता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके जैसा महायाजक पाना एक महान सौभाग्य है। मेरे मित्रों, अब हम हारून और प्रभु यीशु में तुलना को देखेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु में हारून के याजक होने की अनिवार्यताओं का प्रतिरूप नहीं है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको स्मरण होगा कि पश्चाताप के दिन हारून को स्वयं पाप बलि चढ़ाकर अपने पापों की क्षमा के लिए परम पवित्र स्थान में लहू ले जाना पड़ता था, अर्थात उसे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने से पूर्व अपने ही पापों की क्षमा का प्रबंध करना होता था। प्रभु यीशु को अपने पापों के लिए क्षमा का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने आपके और मेरे लिए बलि चढ़ाई थी। इब्रानियों 5:4 पद में लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जैसा हम सब देख चुके हैं कि प्रभु यीशु महायाजक है, क्योंकि वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तब हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों 5:5 में, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। यह बेतलहम में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में नहीं है, यह कलवरी के निकट एक वाटिका के संबंध में है, जहां यीशु को क्रूस की मृत्यु के बाद कब्र में रखा गया था और वहीं उसका पुनरुत्थान हुआ था। वह मृतकों में से फिर जी उठने वालों में पहला था। उसकी याजकीय सेवा तब आरंभ हुई जब वह स्वर्ग में चला गया। यह उसके पुनरुत्थान के बारे में है। तब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 5:6 में, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसीदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हमारे सामने प्रभु यीशु की याजकीय सेवा की तुलना में हारून की याजकीय सेवा पर्याप्त उदाहरण नहीं है। अतः हमारा प्रभु यीशु हारून के याजकीय क्रम में महायाजक नहीं है। हारून एक प्रतीक है, तो प्रभु यीशु मूल है। प्रभु यीशु पुत्र है, जबकि हारून केवल एक सेवक है। इसलिए लिखा है, तू मलकीसीदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यह मलकीसीदक कौन था? इसके बारे में केवल उत्पत्ति की पुस्तक 14 में उल्लेख किया गया है। वहां उसे सर्वोच्च परमेश्वर का याजक कहा गया है। करदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को हराकर, जब अब्राहम अपने भतीजे लूत और सदोम तथा अमोरा के निवासियों के साथ सब लूट का सामान लौटाकर ला रहा था, तब वह अब्राहम को बधाई देने पहुंचा था। सदोम के राजा ने अब्राहम को लूट का सारा सामान देना चाहा, परंतु अब्राहम परीक्षा पर जयवंत हुआ और उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 18-20 पद में पढ़ते हैं। तब शालेम का राजा मलकीसीदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। लिखा है कि वह सालेम का राजा था। सालेम का अर्थ है शांति और वह धार्मिकता का राजा था। मेरे प्रियो, वह धर्मशास्त्र में अकस्मात ही प्रकट होता है। हम नहीं जानते कि वह कहां से आया था और इसी प्रकार वह विलोप भी हो गया था। उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी कहीं नहीं है। हम भजन संहिता 110 में भविष्यवाणी को पढ़ते हैं कि मलकीसेदेक के क्रम में एक याजक आने वाला है। इब्रानियों की पत्री में मलकीसेदेक के बारे में बताया गया है। कुछ अति उत्तम टीकाकारों का मानना है कि मलकीसेदेक देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। मैं इस टीका से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वह प्रभु यीशु का प्रतीक था। अतः मैं उसे एक मानवीय राजा मानता हूं जो सालेम का राजा था। डी कैम्बेल मॉर्गन और लुइस स्पेरी शापर के अनुसार वह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु था। अतः यदि आप यह मानते हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ ही हैं। मेरे विचार में मलकीसेदेक मूसा द्वारा दिया गया एक प्रतीक है जिसकी सुरक्षा परमेश्वर ने की थी। वह आया और तुरंत चला गया। उसका आरंभ और अंत स्पष्ट नहीं है। प्रभु यीशु आदि और अंत है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। उसी ने सब कुछ आरंभ किया है और वह अंत करेगा। वह अनंत परमेश्वर है, अतः उसका न तो आरंभ है और न ही अंत है। लेखक कहता है कि हमारा याजक उसके जैसा है। जी हाँ, वह मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। इसकी व्याख्या अध्याय 7 में की गई है। अगला पद एक ऐसा पद है जो मेरी समझ से बाहर है। प्रभु यीशु के बारे में वह कहता है, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र से पता चलता है कि यीशु 3 बार रोया था, परंतु मेरे विचार में वह और भी रोया था जिसका उल्लेख धर्मशास्त्र में नहीं है। पहली बार हम देखते हैं लाजर की कब्र पर। वह जानता था कि वह उसे जीवित कर देगा, परंतु उसकी बहनों को दुखी देख उसका दिल टूट गया था और यही कारण है कि वह हमारे दुख को समझता है। दूसरी बार हम देखते हैं वह यरूशलेम के लिए रोया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे नगरों के लिए भी रोता है, क्योंकि उनकी दयनीय दशा निश्चय ही रोने का कारण है। और तीसरी बात हम देखते हैं, गतसमने की वाटिका में भी वह रोया था। क्यों? किसी अविश्वासी ने कहा कि यदि वह वहां होता तो प्रभु यीशु को क्रूस की अपेक्षा कोई और मृत्यु देता। शैतान भी यही चाहता था कि वह गतसमनी में ही मर जाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ना न पड़े। लूका के सुसमाचार 22 अध्याय उसके 42 पद में प्रभु यीशु कहता है, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु मसीह गतसमनी में मरना नहीं चाहता था। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है ताकि मैं और आप बच जाएं, और यही कारण है कि वह मेरा और आपका महायाजक है, परमेश्वर के समक्ष हमारी बातों को रखता है। इसलिए यदि मैं निराश हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, बीमार हूं, तो भी हमारे पास में एक महायाजक है जो हमारे निवेदनों को परमेश्वर के समक्ष रखता है। तो क्यों ना आज हम उस महान महायाजक के पास आएं, उसे अपने जीवन की बातों को बताएं, उसे स्वीकार करें, ताकि हम उस महान शांति को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपने उस महायाजक को जाना है या नहीं, परंतु वह आप पर दया करता है और चाहता है कि आप शांति और आनंद प्राप्त करें। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु यीशु महायाजक है, और वह इसलिए है कि वह हमारी सहायता करता है। आज आपको और मुझे चाहिए कि हम ऐसे महायाजक को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपनी बातों को उस तक पहुंचाएं, ताकि मुझे और आपको वह अपने निकटता में रखकर अपनी शांति से परिपूर्ण करे। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आपने हारून और प्रभु यीशु के याजकीय पद की बातों को समझ लिया है। आपने जान लिया है कि प्रभु यीशु ही हमारा महायाजक है, वही हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ए मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के लौट के।